जय राधा माधव जन कुंज राधा जय राधा माधव जय कुंज राधा जय गोपी जन बजावा जय गिरिवर जय गोपी जन बजावा जय गिरिवर
परमहंस परिव्राज गचारी अष्टोत्तर श्री श्रीमधीर डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा वल्लभ ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। आप लोगों में से कितने लोग थे कल की कथा में, हाथ उठाइए। एक दो तीन चार। अच्छा, तो किस बिंदु पर कथा समाप्त हुई थी कल, कौन बताएगा? कल कहाँ पर कथा समाप्त हुई थी?
सीता स्वयंवर।
हमने तो ये बताया था कि सीता स्वयंवर इसमें है ही नहीं,
शादी हो गई,
विवाह हुआ। विवाह नहीं हुआ, दशरथ जी आए हैं,
जनक महाराज की वार्ता।
हाँ, और यह है कि रात्रि
बात हो रहा है दोनों के बीच में, यहाँ पर उनका स्वागत कर
रात्रि व्यतीत की।
हाँ,
तो यहाँ पर यह है कि रात्रि व्यतीत की। अच्छा, अब तब हरि बोल। अच्छा, ये हिल गया ना, इधर से हिल जाता है। तब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के साथ अपना यज्ञ पूरा कर चुके। तब वे राजा अपने पुरोहित सतानंद जी से बोले। कौन बोले?
जनक महाराज।
जनक महाराज बोले। किससे बोले?
सतानंद
उनके पुरोहित हैं, है ना? और ये जनक वंश के पुरोहित हैं सतानंद। और सूर्य वंश के पुरोहित कौन है?
वशिष्ठ
मुनि, है ना? तो जनक जी जो है अपने पुरोहित सतानंद से बोले, तथा प्रभाते जनक कृतकर्मा महर्षि वाचे वाक्यम वाक्यज्ञः सतानंदम पुरोहितम। क्या बोले? कि हे मुनिवर, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज इस समय इच्छुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई सांकाश्या नगरी में निवास करते हैं। इस समय केवल नदी का पानी पीते हैं। कौन सी नदी का पानी पीते हैं? इच्छुमती नदी का पानी पीते हैं। मेरे भाई हैं, मतलब बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं, केवल जल पी करके रहना बहुत मुश्किल है। सांकाश्य नगरी में निवास करते हैं और ये सांकाश्य नगरी किस नदी के किनारे है? इच्छुमती नदी के किनारे। तो उस नदी का जल पीते हैं और सांकाश्य नगरी में निवास करते हैं। और उस के चारों ओर परकोटों की रक्षा के लिए बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वो पूरी विमान के समान विस्तृत है और स्वर्गलोक के समान सुंदर है। भ्राता मम महातेजा वीर्यवान अति धार्मिक कुशध्वज इति ख्याता पुरी मध्य वसन शुभाम वारिया फलक पर्यंताम विवन इच्छुमती नदी सांकाश्याम पुण्य संकाशाम विमानम एव पुष्पकम। ये बात जनक जी ने कही। उनके भाई, क्या नाम है उनके भाई का?
कुशध्वज
नाम है। और कौन सी नगरी में निवास करते हैं? सांकाश्य नगरी में। और कौन सी नदी के तट पर है वो? इच्छुमती नदी। और किस नदी का जल पीते हैं? इच्छुमती नदी का जल पीते हैं। वहाँ रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं उपस्थित देखना चाहता हूँ, यानी उनको बुलाना चाहता हूँ। मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। कौन कह रहे हैं? जनक जी कह रहे हैं कि मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो तपस्या कर रहे हैं उसका फल उनको मिलना चाहिए। और वो फल क्या है? सीताराम का विवाह है। सीताराम के विवाह में मैं उनको देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के रक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीताराम के विवाह के इस मंगल का सुख उठा देंगे। तमहम द्रष्टुमिच्छामि यज्ञ गोप्ता समे मतः प्रीतिम सोपि महातेजा इमाम भोक्ता मया सह। राजा किस प्रकार कहने पर सतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें यही आदेश सुनाया कि मैं अपने भाई कुशध्वज को यहाँ देखना चाहता हूँ। एव मुक्ते तो वचने सतानंद से सन्निधौ आगता के चिन्नव जग्रा जनकस्तान समादिशन। राजा की आज्ञा से वे दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो कुशध्वज को बुलाने के लिए चल दिए, मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। शासनात्तु नरेन्द्रस्य प्रयो शीघ्रवाजभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुं इन्द्राज्ञया यथा। सांकाश्य में पहुंचकर उन्होंने राजा कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का समाचार और जनक का अभिप्राय बताया। सांकाश्याम ते समागम्य ददृशुश्चाकुशध्वजं निवेदयन्यथावृत्तं जनकस्य च चिन्तितम्। उन श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का समाचार सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आ गए। तन्वृत्तम नृपति श्रुत्वा दूत श्रेष्ठ हैर महाजव आज्ञा तो नरेन्द्र से आजगामे कुशध्वज। तो इनके भाई कुशध्वज हैं और जनक जी का नाम क्या है?
शीरध्वज।
सीता के जो पिता हैं वो शीरध्वज नाम के जनक हैं, उनके भाई कुशध्वज नाम के हैं। तो कुशध्वज कहाँ पर आ गए?
मिथिला
में आ गए। वहाँ उन्होंने जनक जी का दर्शन किया और सतानंद और अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर बैठ गए। साददर्श्य महात्मानं जनकं धर्मवत्सलं सोऽभिवाद्य सतानंदं जनकं चाति धार्मिकं राजार्हं परमं दिव्यं आसनं सोऽधिरोहत। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों वीर भाइयों ने मंत्री सुदामन को भेजा। ये दोनों वीर भाई हैं, दोनों वीर भ्राता। कौन है दोनों?
शीरध्वज
और कुशध्वज। दोनों सिंहासन पर विराजमान हैं और उन्होंने मंत्री सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर आप शीघ्र ही महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों और मंत्रियों सहित उन राजा को यहाँ बुला लाइए। दशरथ जी को जहाँ ठहराया हुआ है वहाँ भेजा, पुत्रों के साथ और मंत्रियों के साथ में उनको बुलाइए। उपविष्टा भवतौ तो भ्रातराव मित दिदीन प्रेषयामा चतुर्वीर मंत्री श्रेष्ठम सुदामनम गच्छ मंत्रिपते शीघ्र इक्ष्वाकुम अमित प्रभम आत्मजयसा दुर्धर्षम आनय स्वस मंत्रिणम। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर उन राजा से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोले। कौन बोले? सुदामन। मंत्री सुदामन बोले। किससे बोले? दशरथ जी से बोले। औपकार्याम सगत्वा तो रघुराम कुल वर्धनम दर्श सिरसा चयनम अभिवाद्येद ब्रवीम। हे वीर महाराज, मिथिलापति विदेहराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः सत्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितम्। तो सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ राजा जनक थे। मंत्र श्रेष्ठ है वचः श्रुत्वा राजा सर्षिगणस्तथा सबन्धुरगमत् तत्र जनको यत्र वर्तते। मंत्री उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले। राजा च मंत्री सहित सोपाध्याय सबान्धव वाक्यम वाक्य विदो श्रेष्ठो वाक्यम वाक्य विदाम श्रेष्ठो वैदेहम इदम अब्रवी। महाराज, आपको तो मालूम ही है कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। किसने कहा? दशरथ जी बोले। दशरथ जी बोले महाराज जनक से, है ना, कि जो भी कार्य हो हमारे जो है पुरोहित तो वशिष्ठ जी हैं, उनकी आज्ञा से होता है। उन्होंने कहा, विदितं ते महाराज इक्ष्वाकु कुल देवतम वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वशिष्ठो भगवान ऋषि। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये वशिष्ठ ही पहले मेरी कुल परंपरा का परिचय देंगे। अगर सब आज्ञा दें तो हमारे पुरोहित हमारे कुल की परंपरा का परिचय दें। क्यों वशिष्ठ जी कितने समय से चले आ रहे हैं, इनके कुल में जो जितने राजा हुए हैं सबके नाम जानते हैं, उनके बाद ये हुए उनके बाद ये हुए, वशिष्ठ मुनि जो है उस कुल के पुरोहित हैं। विश्वामित्राभ्यनुज्ञाता सा सर्वैर्महर्षिभिः एष वक्षति धर्मात्मा वशिष्ठो मे यथाक्रमम्। और दशरथ जी की भी आयु 60,000 साल की है, और उनके पहले कितने राजा हुए हैं उनकी भी कितनी कितनी आयु होगी, और वशिष्ठ जी सब के नाम जानते हैं, वे सब तब से चले आ रहे हैं वशिष्ठ जी, है ना। तो इस तरह से इसमें फिर काफ़ी विस्तृत वर्णन है कि वशिष्ठ मुनि जो है परिचय देते हैं, कुल परंपरा का परिचय देते हैं कि दशरथ जी के पहले कौन थे, उनके पहले कौन थे, इस तरह से कहाँ से शुरू हुआ ये वंश, तो पूरा जो है वर्णन करते हैं। और इसके बाद जो है इसके बाद उनके जो पुरोहित हैं शतानंद, तो वे भी वर्णन करते हैं। अच्छा, इसमें जो है फिर महाराज जनक अपने कुल का वर्णन करते हैं, और निमि महाराज निमि का चरित्र सुनाते हैं, फिर निमि के बाद कौन हुए, इस तरह से निमि वंश का वर्णन करते हैं। तो जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके तब वशिष्ठ सहित विश्वामित्र मुनि उन राजा से इस प्रकार बोले, अब वशिष्ठ जी बोले विश्वामित्र के साथ, या वशिष्ठ के साथ विश्वामित्र मुनि बोले, किससे बोले, जनक महाराज से बोले। तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः वाच वचनं वीरं वशिष्ठ सहितो नृपम्। राजन, इक्ष्वाकुकुल और विदेह कुल दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय हैं, दोनों के प्रभाव की कोई सीमा नहीं, इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। ये दोनों राजवंश जो है बहुत श्रेष्ठ हैं। अचिंत्यान्य प्रमेयाणी कुलानि नरपुंगव इक्ष्वाकूणां विदेहानां नैसां तुल्योस्ति कश्चन। ये किसने कहा, विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ जी के साथ ये बात बोल रहे हैं। राजन, इन दोनों कुलों में ये जो धर्म संबंध स्थापित होने हो रहा है ये एक दूसरे के योग्य ही है, दोनों एक दूसरे के योग्य हैं, रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता है, सुंदरता देखें संपन्नता देखें तो बराबर हैं, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप है। उर्मिला जनक की पुत्री हैं और सीता अयोनिजा हैं, तो दोनों राम लक्ष्मण के अनुरूप हैं। सदृशो धर्म संबंधा सदृशो रूप संपदान राम लक्ष्मणयो राजन सीता चोर मिलया सहा। इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो राजा कुशध्वज बैठे हैं इनकी भी दो कन्याएं हैं। कौन कह रहे हैं, विश्वामित्री और वशिष्ठ जी दोनों बोले, इनकी भी दो कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी हैं। राजन, मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का भरत और शत्रुघ्न इन दो राजकुमारों के लिए इनकी धर्म पत्नी बनाने के उद्देश्य से वरण करता हूँ। वक्तव्यम च नरश्रेष्ठ श्रूयताम वचनम मम भ्राता यवि आन धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वज अस धर्मात्मनो राजन रूपेण प्रतिमं भुवि सुता दोयम नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थम वरयामहे भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः वरयेते सुते राजन तयोरर्थे महात्मनो। राजा दशरथ के सभी पुत्र रूप और यौवन से संपन्न हैं, तेजस्वी हैं, देवताओं के समान पराक्रमी हैं। पुत्रा दशरथस्य मे रूप यौवन शालिनः लोकपालय समा सर्वे देवतुल्य पराक्रमम्। राजन, इन दोनों भाइयों को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। पूरा का पूरा इच्छा कुल अब आपका मतलब क्या है, बंधन हो गया, आपसे बंध गया। आप पुण्यवान पुरुष हैं, आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए। ओभियोर भी राजेंद्र संबंधेनानुबद्धता इक्ष्वाकुकुलम् अव्यग्रम् भवता पुण्य कर्मणः। वशिष्ठ जी की सम्मति के अनुसार विश्वामित्र जी का ये वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा। किसने कहा?
जनक
महाराज ने। किससे कहा? विश्वामित्र वशिष्ठ दोनों से कहा। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच मुनिपुङ्गवौ। हे मुनिवरो, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ जिसे आप दोनों एक इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। कितना मेरा सौभाग्य है कि आप स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। कुलम धन्य में दम बन्ने ये शाम तो मुनि पुंगवो सदृशम कुल संबंधम यदा ज्ञापयतः स्वयं। आपका कल्याण हो, आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं को अपने अपने धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करें। एवं भवतु भद्रं वा कुशध्वज सुते इमे पत्न्यो भजे ताम सहितो शत्रुघ्न भरता बुभौ। महामुनि, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करें। एक ही दिन में विवाह होना चाहिए चारों। ये कहना राजपुत्रीणाम चतस्त्रीणाम महामुने पाणिन ग्रहणंदु चत्वारो राजपुत्रा महाबलाम। अगले दो दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त है। इनमें दूसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा जिसके देवता प्रजापति भग हैं। मनीषी पुरुष उस नक्षत्र में विवाह करना बहुत उत्तम बताते हैं। उत्तरे दिवसे ब्रह्मन फाल्गुनी भ्याम मनीषिणाम वैवाहिकम प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापति। कौन कह रहे हैं? किसने कहा? नहीं, महाराज जनक जी बोल रहे हैं। इस प्रकार वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए। ये वचन कहकर के महाराज जनक क्या हुए? उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले। एवं उक्त्वा वचः स्वाम्यं प्रत्युत्थाय कृतांजलिः उभो मुनिवरो राजा जनको वाक्यम अब्रवीन। आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का कार्य कर दिया। मेरा बहुत बड़ा धर्म हो गया, भार भी उतर गया, है ना? बहुत बड़ा भार भी उतर गया, मेरा बहुत बड़ा धर्म कार्य हो गया। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ मुनिवरो, इस श्रेष्ठ आसनों पर, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान होइए। परो धर्म कर्तृत्व मह्यं शिष्योऽस्मि भवतोस्तथा इमान्यासन मुख्यानि आशताम मुनि पुंगवौ। आपके लिए जैसे राजा दशरथ की अयोध्या है वैसी ही ये मेरी मिथिलापुरी भी है। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं, अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करते रहें। क्या करना है, कैसे करना है, आप आज्ञा देते रहिए। यथा दशरथस्यम तथा अध्यो तथा अयोध्या पुरी मम प्रभुत्वेनासि संदेहो यथार्हं कर्तुमर्हतः। राजा जनक जैसा कहने पर राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन राजा जनक को उत्तर दिया। कौन बोले? दशरथ जी बोले हैं? सुनते नहीं ठीक से। दशरथ जी बोल रहे हैं। दशरथ जी ने उत्तर दिया, तथा प्रभुति वैद्य है जनके रघुनंदन राजा दशरथो हृष्टा प्रत्युवाच महीपति। राजन, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप दोनों भाई मतलब कौन? हाँ, शिरध्वज और कुशध्वज आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों और राजाओं का भली भांति सत्कार किया है। जो वाम असंख्य ये गुणों भ्रातरो मितलेश्वर ऋषियो राज संघाश्चा भवद्भ्याम अभी पूजिता। आपका कल्याण हो, आप मंगल के भागी हैं। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे, वहाँ जाकर मैं विधिपूर्वक नांदीमुख श्राद्ध का कार्य करूँगा। ये बात भी राजा दशरथ ने कही। स्वस्ति प्राप्नु हि भद्रम ते गमिष्यामः सुमालयम् श्राद्ध कर्माणि विधिवन् विधास्य इति चाब्रवीम्। तब राजा जनक की अनुमति लेकर राजा दशरथ विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि को आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। तमापृष्टा नरपतिम राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्र तो पुरस्कृत जगाम आशु महायशा। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने विधिपूर्वक आभ्युदयिक श्राद्ध किया। तत्पश्चात प्रातःकाल उठकर राजा ने उत्तम गोदान किया, उत्तम गमों का दान किया। सगत्वा निलयम् राजा श्राद्धम कृत्वा विधायतः प्रभाते काल्यम् उत्थाय चक्रे गोदानम उत्तमम्। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के लिए एक एक लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। कितने पुत्र थे दशरथ जी के? चार पुत्र थे। एक एक पुत्र के लिए एक एक लाख गौएं दान की, तो कुल मिला के चार लाख गौएं दान की है ना। गवाम शत सहस्रम चा ब्राह्मणे भ्यो नराधिप एक कसो नदो राजा पुत्रानुद्देश्य धर्मतः। उन सबके सिंह सोने से मढ़े हुए थे, समझो। चार लाख गऊ दान किए हैं और प्रत्येक गऊ के दो दो सिंह सोने से मढ़े हुए, और उन सबके साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र, दूध धोने का बर्तन भी साथ में। अगर गाय दान करते हैं तो दूध धोने का बर्तन भी तो धोने दोगे हैं तो, और बछड़े भी देना है गोदान में, बछड़ा भी साथ में देना है और पात्र भी देना है दूध का पात्र। इस प्रकार श्री दशरथ जी ने चार लाख गमों का दान किया और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। सुवर्ण श्रृंग संपन्ना सवत्साकांक्ष दोहना गवाम शत सहस्राणी चत्वारी पुरुष हर्षभा वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनंदना ददो गोदान उद्देश्य पुत्राणाम पुत्रवत्सला। गोदान करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय शांत स्वभाव ब्रह्मा जी के समान शोभा पा रहे थे। सस्वतः कृत गोदानैर वृतासन्न प्रतिष्ठदाम लोकपालैर वा भाति वृता सौम्या प्रजापति। इस प्रकार से चारों भाइयों का विवाह होता है। तो अब हम और आगे बढ़ेंगे। ये पेज 166 है, अब 168 पेज। विदेहराज ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, आप ऋषियों को साथ लेकर श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। किसने कहा? किसने कहा? जनक जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप श्री राम के विवाह का पूरा कार्य कराइए। ततो राजा विदेहानाम वशिष्ठम इदम अब्रवीत कार्यस्व ऋषे सर्वाम ऋषि सा धार्मिक रामस्य लोक रामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। तब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र मुनि और शतानंद मुनि को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई। सुन रहे सब लोग? किसने बनाई? वशिष्ठ मुनि ने विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध और फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप से सजाया। साथ ही बहुत सी सुवर्ण पालिकाएं यव के अंकुरों से युक्त चित्रित कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूप युक्त धूप पात्र, संक पात्र, श्रुवा श्रोक अर्घ्य आदि पूजन पात्र, और खीलों से भरे हुए पात्र और धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथास्थान रख दिया। तत्पश्चात वशिष्ठ जी ने बराबर कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन की और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक अग्नि में हवन किया। तथेत्युक्त्वा तु जनकं वशिष्ठो भगवान ऋषि विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकं प्रपामध्ये तु विद्वन् वेदीं कृत्वा महातपाम् अलंचकारतां वेदीं गन्धपुष्पैः समन्ततः सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैः शशाङ्कुरैः अङ्कुराढ्यैः सरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः सङ्गपात्रैः स्रुवैश्रृङ्भिः पात्रैरर्घ्यादिपूजितैः राजपूर्णैः च पात्रीभिः अक्षतैरपि संस्कृतैः दर्भैः समय समास्तीर्य विधिवन् मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाधाय तं वेद्यां विधिवन् विधि मंत्र पुरस्कृतम जुहावाग्नो महातेजा वशिष्ठो मुनि पुंगवहा। तब राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को लाकर अग्नि के सामने श्री राम के सामने बिठाया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा, श्री राम तुम्हारा कल्याण हो, ये मेरी पुत्री सीता तुम्हारे सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। ये परम पतिव्रता महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। किसने कहा? जनक जी ने कहा। किससे कहा? श्री राम से कहा। तथा सीतां समानीय सर्वाभरण भूषितां समक्षमग्ने संतापे राघवाभिमुखे तदा अब्रवीत जनको राजा कौसल्यानंदवर्धनम इयं सीता मम सुता सधर्मे चरितव प्रतीक्षचेना भद्रं ते पाणिग्रहणेषु पाणिना पतिव्रता महाभागा शायेवानुगता सदा। ये कहकर राजा जनक ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ा। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधु साधु सुनाई देने लगा। देवता लोग आकाश में स्थित होकर के देवता लोग साधु साधु बोल रहे हैं और ऋषि मुनि जमीन में है। इत्युक्त्वा प्राक्षिपन् राजा मंत्रपूतं जलं ददा साधु साधुति देवानां ऋषीणां वदतां तदा। देवताओं के नगाड़े बजने लगे, मनुष्यों के नहीं देवताओं के, और कहाँ पर? आकाश में। ऐसा विवाह है कभी देखा? आकाश में नगाड़े देवता लोग बजाएं। देवताओं के नगाड़े बजने लगे, आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई, थोड़ी नहीं बहुत भारी वर्षा हुई आकाश से। आकाश इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो, आओ मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो, इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलम्ब मत करो। देवदंदु विनिर्घोषा पुष्प वर्षो महानभून एवं दत्वा सुतां सीतां मंत्रोदक पुरस्कृतां अब्रवीत जनको राजा हर्षेणाभि परिप्लुतां लक्ष्मणागच्छ भद्रं ते उर्मिलां उद्यतां मया प्रतीक्ष पाणिं गृहणैष्व मा भून कालस्य पर्ययः। लक्ष्मण से कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। तो नाम याद हो गया, चारों भाइयों की पत्नियों के नाम क्या हैं? तो राम की तो सब कुछ जानते हैं, सीता हैं और लक्ष्मण जी की उर्मिला हैं, भरत जी की मांडवी हैं। तमेव मुक्त्वा जनको भरतम चाभ्यभासत गृहाण पाणि मांडव्या पाणिना रघुनंदन। इसके बाद शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, किसने कहा? राजा जनक ने कहा, हाँ कि हे महाबाहु तुम अपने हाथ से श्रुत कीर्ति का पाणि ग्रहण करो। तो शत्रुघ्न की पत्नी श्रुत कीर्ति है। तुम चारों भाई शांत स्वभाव के हो, तुम सबने उत्तम व्रत का आचरण किया है, हाँ तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ, इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीन् मित्रेश्वरः सुतकीर्तेर् महाबाहो पाणिं गृहणीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः स्वाम्याश्च सर्वे सुचरितः व्रताम् पत्नीभिः सन्दुकाकुत्स्था मा भूतकालस्य पर्ययः। राजा जनक का ये भजन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में लिए, फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि वेदी राजा दशरथ और ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार विवाह का कार्य पूरा किया। चारों भाई जो है परिक्रमा कर रहे हैं, इसमें महाराज दशरथ की भी परिक्रमा हो रही, वेदी की और सब ऋषि मुनियों की परिक्रमा हो रही। जनकस्य वचा श्रुत्वा पाणिन् पाणिभिः रसस्पृशन् चत्वारस्ते चतस्त्रिणां वसिष्ठस्य मते स्थिता अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदीं राजानमेव च ऋषींश्चापि महात्मानः सा भार्या रघुद्वः यथोक्तेन तदश्चक्रुर्विवाहं विधिपूर्वकम्। उस समय आकाश में फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई, देखो कितनी वर्षा हो रही फूलों की, फिर वर्षा हुई आकाश में फूलों की, बड़ी भारी वर्षा हुई जो सुहावनी लगती थी, दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि। ये दिव्य दुंदुभी भी कहाँ हैं, आकाश में देवदारों कर रहे हैं। गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। अप्सराएं नृत्य कर रही झुंड की झुंड, कहाँ पर हैं, आकाश में बिना आधार के, कितना आश्चर्य है ना? और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे, गंधर्वों का गीत आकाश में हो रहा है। उन राजकुमारों के विवाह में ये अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। पुष्पवृष्टिर महत्यासीन अंतरिक्षा सुभासुरान दिव्य दुंदुभि निर्घोषैर गीत वादित्र सुने नन्दतुश्चाप्सरसा नन्दतुश्चाप्सरः संघा गंधर्वाश्च जघोकलम् विवाहे रघु मुख्यानाम् तदन्वितम् अदृश्यते। सेनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस विवाह उत्सव में उन राजकुमारों ने अग्नि की तीन बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह किया। इंद्र से वर्तमाने तु दुर्योधन घुष्ट जनादिदे तिरग्निम ते परिक्रम में उर्भार्या महोजसः। कितने बार परिक्रमा की अग्नि की, तीन बार। तब ये चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासी में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्र वधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। अथोपकार्यम जगमुस्ते सभार्या रघुनंदना राजाप्यनुय पश्यन् सर्ष संघा सबान्धवः। अब ये घटना जो सीता जी से संबंधित है ये उस समय की है, जिस समय राम का युवराज के पद पर अभिषेक हो रहा है या होने की तैयारी चल रही है और कैकेयी ने बाधा डाल दी और सब काट उल्टा हो गया है ना। तो सुमंत्र जी दशरथ जी के द्वारा भेजे हुए सुमंत्र ने हाथ जोड़कर श्री राम से कहा, श्री राम के महल में आए, दशरथ जी ने भेजा है, श्री राम आपको पाकर महारानी कौशल्या श्रेष्ठ संतान वाली हो गई है, इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहाँ चलिए, विलंब ना कीजिए। अभी कुछ पता नहीं है कि हुआ क्या, और रात में कैकेयी ने सब कुछ उल्टा कर दिया है और दशरथ जी अब तो जो है बहुत ही दुर्दशा ग्रस्त हैं, लेकिन सुमंत्र कैकेयी ने कहा कि राम को बुला लाओ, तो सुमंत्र तो यही समझ रहे कि अच्छा समाचार है और राम को जो है वो बुलाने के लिए आए, जबकि समाचार बहुत उल्टा है ना। तो सुमंत्र ने जो है श्री राम से कहा, कौशल्या सुप्रजा राम पिता ताम दृष्टुमिच्छति महिष्यापि हि कैकेय्या गम्यताम तत्र माचिरम। सुमंत्र के ऐसा कहने पर महातेजस्वी श्री राम ने सीता जी का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, एवं मुक्तस्तु संघृष्टो नरसिंहो महादुतिः तथा सम्मानयामास सीताम इदम वाचः। कौन बोले, कौन कह रहे हैं? श्री राम कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं?
सीता
जी से कह रहे हैं। देवी, जान पड़ता है पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में ही कुछ विचार कर रहे हैं, निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में ही कोई बात होती होगी। श्री राम मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं कि पिता और माता कैकेयी मेरे बारे में कुछ और मेरे कल्याण की बात कर रहे होंगे। देवी देवश्च देवी चा समागम में मदंतर है मंत्रे ते ध्रुवम किंचन अभिषेचन संगतिम संगीतम। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने की इच्छा वाली परम उदार और कजरारे नेत्रों वाली कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित कर रही होंगी। और कैकेयी का वास्तव में भाव श्री राम के प्रति बहुत अच्छा था, लेकिन कुसंग से कितना नुकसान होता है ये एक शिक्षा मिलती है कि कुसंग पढ़ करके कौन व्यक्ति जो है मतलब बिगड़ नहीं जाता है, और कैकेयी के ऊपर कुसंग का कितना बुरा परिणाम हुआ है ना। तो श्री राम नहीं सोच सकते हैं कि माता कैकेयी कुछ और उल्टा करेगी। लक्ष्य त्वा अभिप्रायम प्रिय कामा सुदक्षिणाम संचोदयति राजानाम मदर्थम असित क्षणाम। मेरी माता कैकेयी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होगी। कौन कह रहे हैं? राम कह रहे हैं। किससे?
सीता जी।
कि मेरी माता कैकेयी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होगी, वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी है, साथ ही मेरा भी भला चाहती हैं, अतः वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होगी। सा प्रहिष्टा महाराजम हित कामानुवर्तिनी जननी चार्थ कामा में कैकेयाधिपते सुता। सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं, उन्होंने मेरे अर्थ को सिद्ध करने वाले सुमंत्र को ही दूत बनाकर भेजा है। दृष्टिया खलु महाराजो महिष्या प्रिया सह सुमंत्रम प्राहिणो दूतम अर्थ कामे करम मम। जैसी वहाँ अंतरंग परिषद बैठी है वैसे ही दूत सुमंत्र जी यहाँ पधारे हैं। ये भी बड़े अंतरंग दूत हैं। अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। कौन कह रहे हैं? राम। किससे कह रहे हैं? सीता जी कह रहे हैं। यादृशी परिषद तत्र तादृशो दूत आगतः ध्रुव मध्येव माम राजा युवराज्येऽभिषेक्ष्यति। अतः मैं प्रसन्नतापूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूँगा, तुम परिजनों के साथ यहाँ सुखपूर्वक बैठो और आनंद करो। हंत शीघ्र में तो गत्वा द्रक्ष्यामि चा महीपतिम सा त्वं परिवारेण सुखम आश्वरमस्व च। पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर सीता देवी उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुंचाने के लिए गई। ये सब एक एक बात बताई गई है कि श्री राम के महल में सीता जी राम के साथ द्वार तक आई। पति सम्मानिता सीता भरतारम असित क्षण आ द्वार मनुव्राज मंगलान्यभि दध्युषी। उस समय वे बोली, आर्यपुत्र। सीता राम को क्या बोलती हैं? आर्यपुत्र। आर्यपुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राज सुयज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करेंगे। तो अभी युवराज पद पर अभिषेक कर रहे हैं, तो युवराज का जो पद है वो सम्राट का पद नहीं होता, अभी सम्राट के पद पर तो वही हैं। तो सीता जी क्या कह रही हैं कि आज आपको महाराज युवराज पद पर अभिषेक कर रहे हैं, फिर आगे चल करके राजसूय यज्ञ जब करेंगे तो आपका सम्राट पद पर अभिषेक करेंगे और वो अपना पद त्याग देंगे, आपको सम्राट बनाएंगे, अभी युवराज बना रहे हैं। तो युवराज का मतलब क्या है कि अब जो निश्चित हाँ सम्राट बनेगा आगे चल करके, हाँ तो युवराज का मतलब ये है कि अब उनकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, सम्राट के नीचे युवराज हैं तो उनको प्रशिक्षण मिलेगा सम्राट बनने का, है तो इस तरह से ट्रेनिंग होती थी। तो युवराज का पद जिसको दिया जाता है उसको फिर ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है ना, सम्राट बनने की ट्रेनिंग है ना। तो माँ सीता जी बोल रही हैं कि आर्य पुत्र ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राजसूय यज्ञ में सम्राट के पद पर अभिषेक करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। राजम दुजाति भीर जुष्टम राजसूयाभिषेचनम कर्तुम अर्हति ते राजा वासवस्येव लोककृत्। आप राजसूय यज्ञ में दीक्षित होकर व्रत का पालन करने में तत्पर श्रेष्ठ मृग चर्मधारी पवित्र और हाथ में मृग का श्रृंग धारण करने वाले हों और इस रूप में आपका दर्शन करते ही मैं आपकी सेवा करती रहूं, यही मेरी शुभ कामना है। आगे चल करके दीक्षितं व्रत संपन्नम वराजनेधरम शुचिं कुरंग श्रृंग पाणिं च पश्यन्ति त्वां भजाम्यहम्। आपकी पूर्व दिशा में इंद्र रक्षा करेंगे, कौन कह रहे हैं? सीता जी कह रही हैं, श्री राम से कह रहे हैं कि पूर्व दिशा में आपकी इंद्र रक्षा करें, दक्षिण दिशा में यमराज रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वरुण देवता रक्षा करें, उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करें। पूर्वाम दिशम वज्रधरो दक्षिणाम पातु ते यमहाम वरुणा पश्चिमाशाम धनेशस्तुत्तराम दिशम। तब सीता जी की अनुमति लेकर श्री राम सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले, तो पत्नी से अनुमति ले हैं भगवान, ये विधि है, ये सब विधि है। सीता जी से अनुमति लेकर के श्री राम महल से बाहर निकले। अथ सीताम अनुज्ञाप्य कृते कौतुक मंगल निश्चक्राम सुमंत्रेण सह रामो निवेशनान। तो फिर आगे और कथा चलती है, तो मैं केवल सीता जी से संबंधित कथा सुना रहा हूँ, इसलिए आगे अब 228 से 255 हरि बोल। अब यहाँ जो घटना है वो ये है कि श्री राम को वनवास मिल गया है, श्री राम को वनवास मिल गया है और श्री राम ने जो है कौशल्या माता से आज्ञा ली है वनवास में जाने की। देवी कौशल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली तब श्री राम बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित शोभा से संपन्न होकर सीता जी के महल की ओर चल दिए। अब श्री राम कहाँ जा रहे हैं? सीता जी के महल की ओर जा रहे हैं। तया ही देव्या चाकृतय प्रदक्षिणो निपीड्य मातुश्चरणो पुनः पुनः जगाम सीता नलयम महायसा सराघवा प्रंजुलित तथा तया श्रिया। श्री राम माता द्वारा स्वस्ति वाचन होने के बाद माता कौशल्या को प्रणाम करके वहाँ से वन के लिए चले। अभिवाद्य तो कौशल्याम रामा संप्रथितो वनम कृतस्वस्तेन वा मात्रा धर्मेष्टे वर्तमानी स्थिता। उस समय मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने लगे। यानी लोगों का जो है मन में क्या हो गया, मंथन होने लगा। किस बात का? कि जिनको युवराज का पद मिलना था उनको ही वनवास मिला है, और बहुत भीड़ में जो है श्री राम चल रहे हैं, है ना। विराजयन राजसुतो राजमार्गम नरैर्वृतम हृदयान्याम अमंथे वनस्य गुणवत्तयाम। विदेही नंदिनी सीता ने अभी तक वो सारा हाल नहीं सुना था। अभी सीता को पता नहीं कि वहाँ पर क्या घटना हुई। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा। वैदेही चापि तत्सर्व न सुस्राव तपस्विनी तदेव हृदय तस्याश्चा युवराज्याभिषेचनम। सीता उस समय के कर्तव्यों और राजधर्मों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। देव कार्यम इसमें सा कृत्वा कृतज्ञा हृष्ट चेतना अभिज्ञा राजधर्माणाम राजपुत्री प्रतीक्षति। इतने में श्री राम ने अपने भली भांति सजे सजाए अंतःपुर में जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था। क्यों लज्जा हो रही श्री राम को? कि अभी मेरे द्वारा इनको अशुभ समाचार मिलने वाला। जितने प्रसन्न लोग हैं उनकी प्रसन्नता दूर हो जाएगी, और कारण राम अपने को मान रहे हैं कि मुझे ये बताना पड़ेगा, तो इसलिए वे लज्जित हो रहे हैं। श्री राम का मुख जो है लज्जा से नीचा हो रहा है। प्रवेशाथ रामस्तु स्वेश में सो विभूषितम प्रहिष्ट जन संपूर्णम हृया किंचन अवांग मुखः। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गई। अब राम को बड़ी लज्जा रही कि सीता को भी अप्रिय समाचार मुझे देना पड़ेगा। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गई। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी, चिंता से व्याकुल अपने उन पति को देखने लगी। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च दंपतिम अपश्योग संतप्तम चिंता व्याकुल इंद्रियम। श्री राम सीता को देखकर अपने मन के शोक का वेग सहन ना कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। अब श्री राम का भी जो शोक है प्रकट हो गया। ताम दृष्ट्वा सही धर्मात्मा नाससा के मनोगतम तम शोकम राघवा सोढ़ुम ततो विभ्रेत ताम गतः। उनका मुख उदास हो गया था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था, वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, प्रभु इस समय आपकी कैसी दशा है। वर्ण वदनम दृष्ट्वा तम प्रसन्न मर्शनम आह दुखा विसंतप्ता किमिदानीमिदं प्रभु। श्री राम आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र है, जो अभिषेक के योग्य है, ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? सीता जी कह रही हैं राम, आपका मन इतना उदास क्यों है? आद्य बारहस्पत श्रीमान युक्ता पुरुषेण राघव प्रोचते ब्राह्मण है प्राज्ञ के तमसी दुर्मना। मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फेन के समान उज्जवल और 100 तीलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है। आपके सिर के ऊपर सफेद छत्र कैसा होना चाहिए? जैसे जल के फेना, जल में फेना होता है कितना सफेद होता है, ऐसा उज्जवल आपके ऊपर छत्र होना चाहिए। 100 तीलियों वाला सफेद छत्र होना चाहिए। कितनी तीलियां? 100 तीलियों वाला लेकिन वो नहीं है, इसलिए आपका मुख शोभा नहीं पा रहा है। किसने कहा? सीता जी ने कहा। न ते सत न ते सत सलाके न जलफेन भेन चाम आमृतम बदनम बलगो छत्रेणा भी विराजते। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले दो चमरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। चमर भी कैसे, चंद्रमा और हंस के समान सफेद दो चमर आपके दोनों तरफ होने चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहा है। विजनाभ्याम जमुख्याभ्याम शतपत्र अन्वेक्षणम चंद्रहंस प्रकाशाभ्याम वीजते नातवाननम। प्रवचन कुशल बंदी सूत और मागध आज अपने वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई देते हैं। कौन? सूत, मागध और बंदी। सूत जो है पुराणों की कथा सुनाते हैं सूत, और जो मागध है वो वंश का वर्णन करते हैं, और जो बंदी है वो व्यक्तिगत राजा की वंदना करते हैं, है ना। तो सूत, मागध और बंदी इस समय आपकी स्तुति नहीं कर रहे हैं। वाग्मिनो वंदिनश्चापि पृष्ठास्त्वां नरसभे स्तुवन्तो नाति दृश्यन्ते मंगल सूत मागधा। विद्वान ब्राह्मणों ने आज आपके मस्तक पर तीर्थों का जल और मधु और दही का विधि पूर्वक अभिषेक नहीं किया है। नतेछोद्रम च दधि च ब्राह्मणा वेद पारगाम मूर्धनि मूर्धाभिषिक्तस्य ददति स्म विधानतः। मंत्री, सेनापति आदि और वस्त्र आभूषणों से विभूषित सेठ, साहूकार और नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। ये क्या मैं लक्षण देख रही हूँ? ये सब उल्टे लक्षण कैसे मैं देख रही हूँ? न त्वां प्रकृति हा सर्वा श्रेणी मुख्या च भूषिता अनुब्रजतुम इच्छन्ति पौर जान है पदार्थता। सुनहरे साज बाज से सजे हुए चार घोड़ों से जुता हुआ श्रेष्ठ फूलों का रथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? आपके आगे आगे फूलों का रथ चलना चाहिए, चार घोड़ों से जुता हुआ, और भी सुनहरे साज बाज से सजे हुए चार घोड़े आपके आगे नहीं चल रहा है। चतुर्वीर वेग संपन्न हय कांचन भूषण मुख्या पुष्प रथो युक्त किम न गच्छति ते गिरतः। आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित और काले पर्वत के समान विशाल काय गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देता है? पर्वत के काले पर्वत के समान बड़ा हाथी आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? न हस्ती चाग्रता श्रीमान सर्वलक्षण पूजिता प्रयाणे लक्षते वीर कृष्ण मेघ गिरी प्रभा। वीर, आज आपके सुवर्ण जटित भद्रासन को हाथ में लेकर सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखाई देता है? आपके आगे आगे चले आपका सोने का सिंहासन लेकर के। नचा कांचन चित्रम ते पश्यामि प्रिय दर्शन भद्रासनम पुरस्कृत यांतम वीर पुरासरम। जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है ऐसे समय में आपकी ये क्या दशा हो रही है? आपके मुख की कांति उड़ गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? अभिषेक को यदा सज्जा किमिदानीमिदं तव अपूर्व मुख वर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्षते। इस प्रकार मिलाप करते हुए सीता से श्री राम ने कहा, सीते आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। इतिले विलपंतीं ताम प्रोवाच रघुनंदनाम सीते तत्र भवान ततः प्रव्राजयति माम वनम। सीते, महान कुल में उत्पन्न हुई, तुम धर्म को जानने वाली हो, जिस कारण ये वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है वो क्रमशः बताता हूँ, सुनो। सुने सब लोग हैं? नहीं सुन रहे? सुन रहे? कौन कह रहे हैं?
राम।
राम किससे कह रहे हैं? सीता जी से कह रहे हैं। कुले महति संभूते धर्म अंगे धर्मचारिणी श्रृणु जानकी येनेदं क्रमेणाद्यागतं मम। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी दो महान वर दिए थे। राज्ञा सत्य प्रतिज्ञ ने पित्रा दशरथ न कैकेयी है मम मात्रे तु पुरा दत्तो महावर। इधर जब महाराज के द्वारा मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी तब कैकेयी ने उस वरदान की याद दिलाई और महाराज को अपने काबू में कर लिया। तयाद्य मम सज्जेस्मिन् अभिषेके नपोदिते प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रतिनिर्जितः। इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। चतुर्दश ही वर्षाणि वस्तव्यम दंड के मयाम पित्रा में भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजिता। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तो कोई इस तरह की बात नहीं सोची थी कि सीता जी साथ जाएंगे, है ना? तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तो प्रस्थान कर चुका हूँ, केवल तुमसे मिलने आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा नहीं करना। देखो क्या नीति है, बहुत मतलब विशेष नीति समझने वाली बात है, है ना? हालांकि वो बात भरत जी में नहीं है लेकिन सामान्यतया जो है ये होता है। तो श्री राम क्या कह रहे हैं कि तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा ना करना क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरे की स्तुति नहीं सहन कर पाते हैं। अब भरत युवराज बनेंगे, है ना, तो मेरी प्रशंसा नहीं करना उनके सामने। इसीलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा नहीं करना। सोहम त्वाम आगतो द्रष्टुम प्रसिद्धो भजनम बनम भरतस्य समीपेते नाहम तथ्या कदाचन ऋद्धियुक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्तवम तस्मान्नते गुणा कथ्या भरतस्यागतो मम। विशेषता तुम्हें भरत के समक्ष अपने सखियों के साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके मन के अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। अहम तेनानु वक्तव्यो विशेषेण कदाचन अनुकूल तया सक्यम समीपे तस्य वर्धितुम। सीते राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए क्योंकि अब वे ही राजा होंगे। अगर युवराज बन गए तो राजा भी वही बनेंगे। 14 वर्ष का वनवास तो मुझे मिला है तो 14 साल के बाद मैं वापस आ जाऊंगा लेकिन अब मैं युवराज ना युवराज बनना है मुझे ना राजा बनना है, है ना, तो मैं उनके नीचे ही रहूंगा, है ना। तस्मै दत्तम नृपतिना यौवराज्यम सनातनम साप्रसाद्यस्तु आसीते नृपतिश्चाभिशेषतः। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा, तुम धैर्य धारण करके रहना। अहम चापि प्रतिज्ञां ताम गुरु समनु पालयन वन मध्यैव यास्यामि स्थिर भव मनस्विनी। सीते मेरे वन को चले जाने पर तुम्हें प्राय व्रत और उपवास में लगी रहना चाहिए। क्या करो? भोगों को नहीं भोगना है। अगर पति नहीं है घर में तो पत्नी को भोग में मन नहीं लगाना है। किस में मन लगाना है? अपना व्रत और उपवास में मन लगाना है। याते च मे कल्याणी वनम मुनि निसेवितम व्रतोपवास परया भवितव्यम त्वया नघे। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि वंदितव्यो दशरथा पिता मम जनेश्वरः। मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना। कब प्रणाम करना?
सुबह।
हाँ, रोज प्रतिदिन उठ कर के। तो वे बूढ़ी हुई, एक तो वे बूढ़ी हुई, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है, अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे भी विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं। कौन? कौशल्या माता। माता च मम कौशल्या वृद्धा संताप कर्षिता धर्ममेवाग्रता कृत्वा तत्ता सम्मानम अर्हति। जो मेरी शेष माताएं हैं उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना है, क्योंकि स्नेह उत्कट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। वंदितं व्यास्य ते नित्यं यासेषा मम मातरः स्नेह प्रणय संभोग समाहि मम मातरः। श्री राम ने ये नहीं कहा कि कैकेयी के पास नहीं जाना, कैकेयी से दूर रहना, वो बड़ी दुष्ट है, समान रूप से सब माता समान कर। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। भ्रातृपुत्र समोचापि द्रष्टव्यो च विशेषतः तुया भरत शत्रुघ्नो प्राण प्रियतरो मम। सीते, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन सहि राजा च वैदेही देशस्य च कुलस्य च। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं और विपरीत बर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। किसके लिए कह रहे हैं श्री राम? भरत के लिए, कि भरत को तुम कुपित कर सकते हो। आराधिता हिशेलेन प्रयत्नश्चोपसेविताम राजाना संप्रसीदन्ति प्रकोप्यन्ति विपर्यये। जो अहित करने वाले हैं वे अपने औरस पुत्र ही क्यों ना हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं और आत्मीय न होने पर भी जो सामर्थ्यवान होते हैं उन्हें भी अपना लेते हैं। औरसस्यानपि पुत्रान हितिदन्त हितकारिणः समर्थान संप्रगृहणन्ति जनानामपि नरा जनानपि नराधिपा। अतः कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म और सत्य व्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। सातम वसे कल्याणी राज्ञा समनुवर्तिनी भरतस्य रता धर्मे सत्य व्रत परायणा। प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा, तुम्हें यही निवास करना होगा, तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट ना हो। श्री राम क्या कह रहे हैं? तुम्हें जो भी कष्ट हो लेकिन अपने बर्ताव से किसी और को कष्ट नहीं देना। इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करना है। अहम गमिष्यामि महावनम प्रिय त्वया हि वस्तव्यम इह विभामिनी तथा विलीकम कुरुषे न कस्यचिन तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम। तो यहाँ पर इस कथा को विश्राम देकर के एक कुछ लीलाएं हैं जो कि मैं सुनाना चाहता हूँ, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। एक लीला है, ये दिनांक 27 अप्रैल 2015 की है। ये जो दिन था ये सीता महारानी की आविर्भाव का दिन था। कौन सा? 27 अप्रैल 2015 हैं, पिछले साल। हाँ, तो पिछली बार 2014 की हमने लीला को सुनाई थी ना, सीता जी के आविर्भाव के दिवस पर। तो पिछले साल 27 अप्रैल 2015 के दिन क्या लीला हुई? आज के दिवस पर श्री राम की भार्या सीता महारानी के आविर्भाव का पवित्र दिवस था और ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में आज मुझे प्रातःकालीन प्रवचन देने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिस समय मैं प्रवचन के समय पर सीता महारानी से संबंधित कथा पढ़कर सुना रहा था। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। मैंने ब्रह्म व्यर्थ पुराण से ये बात जो ही पढ़कर सुनाई कि श्री राम को सीता के अपहरण का समाचार जटायु नाम के एक पक्षी के द्वारा प्राप्त हुआ। ठीक उसी समय एक पक्षी उड़कर आया और मैं जिस व्यासन पर बैठा हुआ था उसके पीछे के दरवाजे के ऊपर आकर बैठ गया। आश्चर्य है नहीं? कितना आश्चर्य है। जैसे मैंने पढ़ के सुनाया कि श्री राम को सीता के अपहरण का समाचार जटायु नाम के एक पक्षी द्वारा प्राप्त हुआ, उस समय एक पक्षी व्यासन के पीछे के दरवाजे के ऊपर आकर के बैठ गया। श्री कृष्ण ने घटना का एक ऐसा योग बनाया कि जिस समय मेरे मुख से पक्षी की बात निकली ठीक उसी समय उस स्थान पर एक पक्षी आकर बैठ गया। श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ऐसी अद्भुत घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब सुनिए, अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई जिसमें मैंने ये बात कही कि सीता जी के उपवन में सुख पक्षी का एक जोड़ा आया। जब सीता जी का विवाह नहीं हुआ था तो उनके उपवन में सुख पक्षी का एक जोड़ा आया। ठीक उसी समय कबूतर पक्षी का एक जोड़ा आकर श्रील प्रभुपाद की छत के ऊपर बैठ गया। एक जोड़ा आश्चर्य, सीता जी के उपवन में सुख पक्षी का जोड़ा आया और यहाँ कबूतर पक्षी का जोड़ा कहाँ आ गया? प्रभुपाद की छत में आ गए, बैठ गए। ये कहते हैं आश्चर्य की घटना हुई कि जिस समय मैंने सुख पक्षी के एक जोड़े के आने की बात कही, ठीक उसी समय सुख पक्षी के स्थान पर कबूतर पक्षी का एक जोड़ा आ गया। श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ऐसी अद्भुत घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। मैंने आगे कथा में कहा कि उस समय सुख पक्षी के जोड़े में से मादा पक्षी ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो सीता जी कह रही थी ना तोता से कि तुम जा सकते हो अपने संसार, लेकिन ये जो मैना है ये मेरे साथ रहेगी और मुझे राम कथा सुनाएगी, है ना। लेकिन उस मैना ने शरीर छोड़ दिया, दुख के मारे कि मुझसे बंधन में रहना पड़ेगा। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ठीक उसी समय कबूतर पक्षी के जोड़े में से मादा पक्षी उड़ गई और केवल नर पक्षी ही रह गया। ये भी है आश्चर्य, है ना। जैसे मैंने सुनाया कि जो तोता की पत्नी है मैना, उसने शरीर छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ? कबूतर, जो मादा कबूतर है वो उड़ गई और नर कबूतर रह गया। श्री कृष्ण ने घटना का एक ऐसा योग बनाया कि जिस समय मैंने कहा कि सुख पक्षी के जोड़े में से मादा पक्षी के द्वारा शरीर छोड़ने पर वहाँ पर केवल नर पक्षी ही रह गया, ठीक उसी समय तथा उसी स्थान पर कबूतर पक्षी के जोड़े में से मादा पक्षी की ओर जाने पर वहाँ पर केवल नर पक्षी ही रह गया। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसी अद्भुत घटनाओं को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। फिर ये घटना इसी दिन की एक और घटना। आज के दिवस पर सीता महारानी के आविर्भाव का अत्यंत पवित्र दिवस था तथा श्यामाकांत देवी ने अपने घर में इंटरनेट चलाकर ये देखना चाहा कि आज के दिवस पर ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में प्रातःकालीन प्रवचन किसके द्वारा हो रहा है तथा क्या वो प्रवचन सीता महारानी के विषय में हो रहा है। श्यामाकांत देवी, श्यामाकांत देवी की बहुत इच्छा थी कि आज उस मंदिर में मेरा प्रवचन हो तथा इंटरनेट के द्वारा मेरे मुख से सीता महारानी की चर्चा सुने। उस समय उन्होंने जो ही इंटरनेट में देखा उस समय उन्हें ये देखकर अत्यंत हर्ष हुआ कि आज के दिवस पर मैं सीता महारानी के विषय में प्रवचन दे रहा हूँ। परंतु कुछ समय बाद इंटरनेट में कुछ ऐसी बाधा आई कि इंटरनेट के रुक जाने के कारण श्यामाकांत देवी मेरा प्रवचन ना देख पा रही थी और ना ही सुन पा रही थी। अब श्यामाकांत देवी ने YouTube में संचित हुए पहले के प्रवचन निकाले जिनमें सबसे नीचे मेरा चित्र था। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि श्यामाकांत देवी ने जो ही मेरे चित्र पर क्लिक किया उस समय तुरंत ही मेरा पिछले वर्ष दिनांक 8 मई 2014 का एक ऐसा प्रवचन निकला जो पिछले वर्ष सीता महारानी के आविर्भाव के उपलक्ष्य में मैंने दिया था। अरे कितना श्री कृष्ण घटना का एक ऐसा योग बनाया कि श्यामाकांत देवी मेरी आवाज में सीता महारानी के आविर्भाव का प्रवचन सुनना चाहती थी तथा उन्हें अत्यंत आश्चर्यजनक विधि के द्वारा पिछले वर्ष का प्रवचन सुनने को मिला। जैसे में उन्होंने फोन के द्वारा मुझे इस घटना की सूचना दी और समय श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसी अत्यंत अद्भुत घटना योग को समझकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि ओ। इस तरह से हमने कुछ चर्चा की है सीता राम का चरित्र। अभी कुछ समय है हमारे पास, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, सूत मागद बंदी जो है, राजाओं का कोई उत्सव होता है तो ये लोग गुणगान करते हैं। तो जो सूत हैं तो वे प्राचीन कथाओं का वर्णन करते हैं, पुराण का वर्णन करते हैं, पुराणों में उनका जो है वंश जो लिखा हुआ है उसमें से बताते हैं, तो पुराणों से सुनाते हैं, जो प्राचीन शास्त्र हैं उनसे वंश का वर्णन सुनाते हैं, तो सूत कहलाते हैं। और जो मागध हैं वो वंश के राजाओं का चरित्र सुनाते हैं, जो पहले के राजा हुए हैं उनका गुण दान करते हैं, सूत मागध। और बंदी होते उस समय के राजा का गुणगान करते हैं कि इस समय जो राजा हैं वो, तो आप सुन रहे हैं। तो सूत जो है बहुत प्राचीन काल का वर्णन करते हैं, और मागध उनके बाद है ना, और जो बंदी है वो इस समय के जो राजा है, एक व्यक्ति है उसका गुणगान करता है। इस प्रकार से सूत मागध बंदी ये तीनों में अंतर है, लेकिन ये तीनों गुणगान करते हैं, यश का वर्णन करते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न चर्चा? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। महाराज दशरथ श्री राम को युवराज पद देना चाहते थे, है ना, और कैकेयी को मंथरा ने कुछ ऐसा भर दिया कि उसने महाराज दशरथ से जो है दो वरदान मांगे। तो कहाँ तक योचित है कि महाराज दशरथ प्रतिज्ञा करें कि तुम जो मांगोगे वही मैं दूंगा? आप लोग विचार कर रहे हैं, महाराज दशरथ ने ये प्रतिज्ञा क्यों कर ली कि तुम जो मांगोगे वही दूंगा? क्योंकि कुछ भी मांगे हैं तो वो तो उनको ये कहना चाहिए कि नहीं, मैं पहले विचार करूंगा, तो पहले मांगो, मैं फिर विचार करूंगा कि मैं मुझे देना या नहीं देना है, कि तुम्हारा कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि तुम जो मांगो मैं वो दूंगा, है ना? क्या विचार है आपका? दो वरदान देने के लिए वचनबद्ध थे। हाँ, लेकिन दो वरदान कुछ सीमा तो होती है ना, इस सीमा के अंदर ही तुम वरदान मांग सकती हो, ये नहीं है कि तुम जो है कुछ भी वरदान मांग लो। तो महाराज कह सकते थे कि वरदान मैं दूंगा, लेकिन जो तुम्हारे योग्य होगा, जो उचित होगा, अनुचित वरदान मैं नहीं दूंगा। तुम्हारी कोई अनुचित इच्छा है? हाँ, ये जो है इस भौतिक संसार में कभी मतलब ऐसे संबंध बन जाते हैं, अपने प्रिय संबंध इतने बन जाते हैं कि एक दूसरे पर इतना विश्वास होता है कि तुम जो मांगो वही दूंगा, क्योंकि जो मेरा सुख है वो तुम्हारा सुख है, जो तुम्हारा सुख है वो मेरा सुख है, तो तुम जो मांगोगी वो मेरे लिए कुछ ऐसा अनुचित नहीं हो सकता, मेरे लिए अनिष्ट नहीं हो सकता। तो ये जो है मतलब कभी विश्वास ऐसा जम जाता है तब ऐसा, तो दशरथ जी की कोई गलती नहीं है, दशरथ जी की कोई गलती नहीं। लेकिन यहाँ जो है ये जो दुर्घटना हुई इसका कारण क्या है? असत्संग। इसका कारण क्या है? असत्संग। असत्संग में जो है कोई व्यक्ति कितना गिर सकता है, कितना बिगड़ सकता है, तो ये जो है समझने वाली बात है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि असत्संग के द्वारा कितना दुर्दशा हो सकती है। तो ये है ना। लेकिन साथ साथ कश्यप मुनि, जैसे कश्यप मुनि थे तो कश्यप मुनि भी दीति की सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने भी कहा मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहती हो। तो दीति ने फिर कश्यप मुनि से वरदान मांगा, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र की हत्या करे। अब अदिति के पुत्र इंद्र हैं, इंद्र को जो है देवताओं का राज्य प्राप्त हो गया है, और दीति के दो पुत्र थे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, दोनों ही भगवान के द्वारा मारे गए, तो उसको बहुत ईर्ष्या थी। तो उसने ये वरदान मांगा अपने पति से कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र की हत्या करे। तो कश्यप मुनि भी अपने मन में बहुत चिंतित हो गए कि गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैं कितना स्त्री के बस हो गया, कि मैंने क्यों ऐसा बोल दिया इसको, गलती मेरी है। फिर मन में सोचने लगे अब इस पाप से मैं कैसे बचूं, ये तो बहुत बड़ा पाप है, हैं कि मैं इसको ऐसा पुत्र दूं जो इंद्र की हत्या करें, मैं इस पाप से कैसे बचूं। तो कश्यप मुनि ने जो है उपाय अपना सोच लिया, बोले ठीक है तुमको जो है एक पुत्र ऐसा प्राप्त होगा जो इंद्र की हत्या करे, लेकिन तुम्हें कुछ व्रत करने पड़ेंगे, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा और एक साल तक करना पड़ेगा। तो कश्यप मुनि ने जो है दीदी को नहीं पर्य व्रत नहीं पुंसवन व्रत, पुंसवन व्रत बताया कि पुंसवन व्रत करो तुम एक साल, एक साल तक, और उसमें कई नियम बताए क्या करना क्या नहीं करना। उसमें एक नियम ये भी बताया कि किसी से ईर्ष्या नहीं करना। अब ईर्ष्या ही के कारण तो उसने जो है ये मांगा था, तो किसी प्राणी से ईर्ष्या नहीं करना है ना। तो इसमें जो है फिर कश्यप मुनि फिर मतलब बच गए, और फिर ये भी कहा कि अगर तुम्हारा व्रत अगर भंग हो गया किसी प्रकार से तो तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वो इंद्र का मित्र बन जाएगा, इंद्र की हत्या ना करके वो इंद्र का ही सेवक बन जाएगा, इंद्र का सेवक बन जाएगा। तो दीति ने बड़ी खुशी से नहीं नहीं मैं तो करूँगी पालन, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, और बड़े विश्वास के साथ उसने पुंसवन व्रत को करना शुरू कर दिया। और एक बार क्या हुआ कि बहुत थक चुकी थी नियमों का पालन करते करते, तो भोजन के बाद उसने जो है हाथ पर नहीं धोए और सो गई, नींद आ गई। तो उस समय इंद्र ने जो है अवसर समझ करके कि अवसर अच्छा अवसर है, दीति के गर्भ में प्रवेश किया छोटा रूप धारण करके, अपने वज्र से उस पुत्र के सात टुकड़े कर दिए। लेकिन पुंसवन व्रत के प्रभाव से वो सात जो टुकड़े थे वो सात बच्चे बन गए, और वो रोने लगे। तो इंद्र को जो है मतलब बड़ी बड़ा भय हुआ कि माता जाग जाएगी, तो सात बच्चों के साथ साथ और टुकड़े कर दिए, 49 टुकड़े हो गए, अब 49 बच्चे हो गए। अब वो और रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे है ना, और वो बोले कि हम तो आपके भाई हैं हमें क्यों मार रहे हो। तब इंद्र को समझाया कि अरे पिताजी ने तो कह ही दिया था कि ये हमारे सेवक बन जाएंगे, तो मैं इनको नहीं नहीं अब मैं नहीं मारूंगा तुमको, अब तुम लोग मत रो है ना, है ना। तो इस तरह से और फिर दीति 49 पुत्रों का जन्म हुआ, और दीति की नींद खुली, और इंद्र ने जो है सब अपना कर्म बताया कि मैंने क्या किया था, और दीति का जो हृदय इतना शुद्ध हो गया था पुंसवन व्रत से कि उसने इंद्र के प्रति ईर्ष्या छोड़ दी, और आज्ञा दे दी कि इन 49 भाइयों को अपने साथ ले जाऊं। तो वो जो है दैत्य ना बन करके देवता बन गए, दीति के पुत्र थे लेकिन दैत्यों में उनकी गणना नहीं आती, 49 मरुद गण तो इंद्र के ही भाई बन गए है ना। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन पुरुषों को बहुत ध्यान रखना चाहिए इस विषय में। लेकिन साथ साथ ये भी है कि पत्नी में अगर विश्वास न करें तो किस पर विश्वास करें, क्योंकि तो पत्नी जो है जीवन साथी होती है ना, और फिर ऐसी घटना हो जाए तो फिर यही माना जाता है कि ऐसा जो है देव का विधान है, तो ये भी माना जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी समझना है कि स्त्रियों का मन बड़ी जल्दी जो है संघ के प्रभाव से दूषित भी हो सकता है। स्त्रियां हैं, बालक हैं, तो इनका जो स्वभाव है वो बड़ी जल्दी बदल सकता है और संगति के कारण बहुत परिवर्तन हो सकता है। और कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद। श्री सीताराम कथा महामहोत्सव की, जगत गुरु श्री शिल प्रभुपाद की, श्री राधा वल्लभ गौरताई की।
कल भी राम करते।